रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कुरान मजीद के सूरह यूनुस की 47वीं, 48वीं और 49वीं आयतों की तिलावत का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं कारी कासिम रजीई।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون تأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور کہتے ہیں یدی تم سچے ہو تو یہ دھمکی کب پوری ہوگی کہہ دو مجھے نہ تو اپنے برے کا ادھیکار ہے نہ بھلے کا بس جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے ہر جاتی کے لیے ایک نیت سمے ہے جب ان کا نیت سمے آ گیا تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے شوتاؤں میں ہوں احمد عباس میرا سلام سویکار کیجیے ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.iriv.ir ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098-9035065492 श्रोताओ, आज बुधवार है, शहरी वर्ग की 9, सफर की 3 और अगस्त की 21 तारीख। हमारी इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनाएंगे आशा की किरण, और सभा के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आज कल। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप हमारी इस सभा से सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ یوکرین جنگ کے مسئلے میں مہتوپورن سندیش کے ساتھ ایران کے ودیش منتری ماسکو گئے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ بند پڑے کاروبار کے دوبارہ شروع ہونے کے اشارے مل رہے ہیں۔ فلسطین میں کئی جگہوں پر زائنیوں اور فلسطینیوں کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ روس نے یورپ کو گیس کی سپلائی پھر روک دی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑھراجیہ ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے، جو روس کی یاترا پر ہیں، روسی ودیش منتری سرگئی لاوروف کے ساتھ سنیکت سنواداتا سمیلن میں کہا کہ شانتی و سرکشا کی بحالی اور جنگ روکے جانے سے سمبندھت ایک پرستاؤ پر وچار کیا جا رہا ہے۔ ودیش منتری امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران نے یوکرین کے سلسلے میں اچ نیتتو کے استر پر اپنا اسٹینڈ صاف شبدوں میں بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کے معاملے میں مانویہ مسئلہ، پرماڑو بجلی گھر کا وشے اور قیدیوں کی رہائی کا وشے خاص طور پر دھیان کا کیندر ہے، اور ورتمان استھتی سے باہر نکلنے کے لیے سبھی اپلبدھ اپایوں اور سادھنوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایران کے ودیش منتری نے ایران پر لگی پابندیاں ہٹائے جانے کے وشے پر جاری وارتا کے بارے میں کہا کہ اگر امریکہ یتھارتھ وادی رویہ اپناتا ہے اور ورتمان مسودے کو ٹھوس بناتا ہے تو سمجھوتا پہنچ سے دور نہیں ہے۔
ایران نے افغانستان میں ویاپت آتنکواد کو بھیانک خطرہ قرار دیا ہے۔ تہران نے کہا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں ایک سماویشی سرکار کے لیے انتراشٹریہ سمودائے دوارا بار بار کی جا رہی مانگ کو سویکار کرنا چاہیے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق سنیکت راشٹر سنگھ میں تعینات ایران کی اپستھائی پرتندھی زہرا ارشادی نے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں افغانستان کے مدعے پر ہو رہی بیٹھک میں بولتے ہوئے کہا کہ طالبان کو وشو سمودائے کی اس مانگ کو سویکار کرنا چاہیے کہ جس میں سماویشی سرکار کے گٹھن کی بات کی جا رہی ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ کیول ایک سماویشی سرکار ہی افغانستان میں سبھی سموہوں اور سمودایوں کے ہتوں کی رکشا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی بھاشائی، نسلی اور دھارمک الپ سنکھیکوں کے ساتھ ساتھ دیش کی مہیلاؤں اور لڑکیوں کے ادھیکاروں کو سنشچت کرنے کے لیے ایک ویاپک سرکار بنانے کے علاوہ طالبان کے پاس کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے۔
بھارت اور پاکستان کے بیچ بند کاروبار دوبارہ شروع کرنے کا وشے چرچا میں آ گیا ہے۔ پاکستان کے وت منتری مفتاح اسماعیل نے ایک بیان دیا جس سے یہ وشے چرچا کے کیندر میں آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار وناشکاری باڑھ کے بعد بھارت سے آیات بحال کرنے کی انومتی دینے کا فیصلہ، دیش میں سپلائی کی استھتی کا جائزہ لینے، گھٹکوں اور اسٹیک ہولڈرز سے مشورہ کرنے کے بعد کرے گی۔ پاکستانی وت منتری نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک سے ادھک ایجنسیوں نے سرکار سے سمپرک کیا ہے کہ انہیں زمینی سیما کے راستے سے بھارت سے کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرنے کی انومتی دی جائے۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سرکار اپنے گھٹکوں اور اہم اسٹیک ہولڈرز کے ومرش کرنے کے بعد بھارت سے آیات بحال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ पाकिस्तान में भयावह बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन देश के लगभग एक तिहाई हिस्से निगल चुकी बाढ़ की वजह से खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा डूब चुका है। इससे देश में अनाज, सब्जियों, फल और दूसरे खाद्य पदार्थों की किल्लत हो सकती है।
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने के बाद इस राज्य और अन्य जगहों पर अदालत की अवमानना से जुड़े सारे केस बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशकों तक चले अयोध्या विवाद के मुकदमों को ये कहते हुए बंद कर दिया कि याचिकाकर्ता और आरोपी दोनों का निधन हो चुका है। अदालत ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदी पक्ष को सौंप दिए जाने के अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमीन के बुनियादी विवाद का फैसला हो चुका है, जिसके बाद अदालत की अवमानना का केस बेअसर हो जाता है। जस्टिस संजय किशन कंवल और अभय एस ओका की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के उस फैसले की रोशनी में यह दरख्वास्त बेअसर हो गई, जिसमें हिंदू पक्ष को बाबरी मस्जिद की जमीन सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत की गारंटी सुप्रीम कोर्ट को दी थी, मगर इसके बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद यूपी सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चला।
फिलिस्तीन में जहां एक तरफ वेस्ट बैंक में इसराइलियों की बस पर फायरिंग हुई, वहीं दूसरी ओर ज़ायनी सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद झड़पें हुईं। इसराइली सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर आई कि वेस्ट बैंक में नाबलुस शहर के दक्षिण में इसराइलियों को ले जाने वाली बस पर फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इसराइलियों में भारी खौफ फैल गया। फिलिस्तीनी सूत्रों ने बताया कि जेनिन नगर के पश्चिम में याबत शहर के पास फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं ने इसराइली सैनिकों पर फायरिंग की, जबकि रामल्ला में ज़ायनी सैनिकों ने 2 घरों को घेर लिया है और उन पर फायरिंग कर रहे हैं। इसी बीच हमास संगठन की राजनीतिक शाखा के प्रमुख ने मंगलवार को फिलिस्तीनी बच्ची से मुलाकात की, जो हालिया गजा युद्ध में अपने हाथ और पैर गंवा चुकी है। रहफ सुलेमान नाम की बच्ची 3 दिवसीय गजा युद्ध में ज़ायनी सेना के हवाई हमलों में अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा बैठी।
एक मानवाधिकार संगठन ने सूचना दी है कि सऊदी अरब की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और आले स्वशासन से नाराज लोगों का दमन जारी रखते हुए एक ताज़ा मामले में सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने वाली एक महिला को 45 साल की जेल की सजा सुनाई है। सऊदी अरब का मानवाधिकारों की श्रेणी में एक काला रिकॉर्ड है और पिछले वर्षों में गैर कानूनी तरीकों से दी गई मौत की सजाएं, यातनाएं, मनमानी, गिरफ्तारियां, खुफिया एजेंसियों द्वारा आम लोगों का अपहरण, राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हिरासत और धार्मिक अल्पसंख्यकों की वैध मांगों के दमन सऊदी अरब में आम बात होती जा रही है।
रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली मुख्य गैस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई फिर रोक दी, जिसके बाद गंभीर ऊर्जा संकट से गुजर रहे यूरोप की चिंता बढ़ गई है। ऊर्जा संकट के चलते यूरोप के धनवान देशों में भी मंदी का डर पैदा हो गया है और गैस की सप्लाई रुक जाने का विषय यूरोपीय देशों को बेचैन कर रहा है। नॉर्द स्ट्रीम 1 से गैस सप्लाई बुधवार से 3 सितंबर तक रुक जाएगी। जर्मनी को बाल्टिक सागर के रास्ते से होने वाली गैस की सप्लाई भी रुक गई है। यूरोपीय देशों को यह डर है कि रूस कहीं गैस की सप्लाई लंबे समय के लिए ना रोक दे, क्योंकि इस समय यूरोप और रूस के बीच जंग जैसे हालात हैं। यूक्रेन के मसले पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। यूरोप को लगता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगी पाबंदियों के जवाब में मॉस्को गैस की सप्लाई रोक सकता है और उसका मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन गैस को हथियार के रूप में प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मॉस्को सरकार इस आरोप को खारिज करती है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि वो चीन के सिनकियांग प्रांत में मानवाधिकारों के भीषण हनन के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। संस्था का कहना है कि बुधवार को यह रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, जो सिनकियांग में उइगर मुसलमानों की स्थिति और मानवाधिकारों के हनन के हालात को बयान करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार मामलों की विशेष रिपोर्ट के कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि बुधवार को ही रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। ह्यूमन राइट्स वॉच की सूफी रिचर्डसन ने कहा कि ये रिपोर्ट अगर जारी कर दी जाती है तो ये बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देर से आ रही है, लेकिन ये भी खुशी की बात है कि देर से ही सही से जारी करने का फैसला अब कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे ये पैगाम जाएगा कि कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है।
अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव के साथ साथ टकराव की स्थिति भी लगातार बढ़ रही है। इस बीच अमेरिका ताइवान को नए नए हथियार देकर चीन को उकसाने वाली कार्यवाही कर रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की मदद के लिए अमेरिका एक बड़ा कदम उठा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की कोशिश है कि वो ताइवान को उन हथियारों से लैस कर सके जिससे वो अपनी सुरक्षा करने में कामयाब हो।
पूर्व सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया है। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। वे वर्ष 1985 से 1991 तक सोवियत संघ की सत्ता में थे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं इराक की ताजा स्थिति, पूर्व सोवियत संघ के प्रमुख नेता गोर्बाचोव का निधन। तो सबसे पहले इराक की ताजा स्थिति का विषय। सदर धड़े के प्रमुख मुक्तदा सदर की राजनीति से संन्यास लेने की खबरों के बाद इराक के कई क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए थे और मुक्तदा सदर के समर्थकों ने सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों और दफ्तरों को आग लगाना शुरू कर दिया था। कंट्रोल से बाहर होते हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने राजधानी सहित लगभग पूरे इराक में कर्फ्यू लगा दिया था। एक भाषण में मुक्तदा सदर ने अपने समर्थकों से एक घंटे के भीतर ग्रीन जोन इलाका छोड़ने की अपील की थी। समर्थकों से मुक्तदा सदर की अपील के बाद धीरे धीरे उनके समर्थकों ने घर लौटना शुरू कर दिया, जिसके बाद मीडिया चैनलों ने वीडियो तस्वीर जारी की जिससे पता चलता था कि सदर धड़े के समर्थक ग्रीन जोन इलाके से निकलना शुरू हो गए थे। बगदाद से IRIB के लिए जलाल खालिदी की रिपोर्ट, साथी रविश जैदी की जबानी।
दो दिनों के खूनी संघर्ष के बाद बगदाद में अब शांति देखने को मिल रही है। ये शांति टीवी पर आकर सदर धड़े के प्रमुख मुक्तदा सदर द्वारा की गई शांति की अपील, हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की उनके द्वारा की गई आलोचना और सदर द्वारा इराक की जनता से मांगी गई माफी का नतीजा माना जा रहा है।
وانا اعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث।
मुक्तदा सदर कहते हैं कि इराकी जनता से माफी मांगता हूं, अब ये कोई आंदोलन नहीं रहा क्योंकि अब ये शांतिपूर्ण नहीं रहा है। इन हिंसक प्रदर्शनों की वजह से सबसे ज्यादा आम लोगों को ही नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों की वजह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। ऐसे लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। सदर धड़े के प्रमुख ने कहा कि बेगुनाहों का खून बहाना हराम है। मैं अपने पहले वाले ऐलान पर बाकी हूं। मैंने खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग कर लिया है। साथ ही सरकार के हत्यारे सुरक्षा बलों से अपनी नफरत की घोषणा करता हूं। वहीं अपने समर्थकों को केवल 60 मिनट का समय देते हुए कहते हैं कि ग्रीन जोन से निकल जाएं और अपने प्रदर्शन को देश की संसद के सामने एकत्रित होकर समाप्त करें।
शुक्र للقوات الامنيه।
मुक्तदा सदर कहते हैं कि मैं ऐसे सुरक्षा बलों और स्वयंसेवी बलों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव नहीं किया। दूसरे, सदर धड़े के सभी प्रदर्शनकारियों को 60 मिनट का समय देता हूं कि वे ग्रीन जोन से तुरंत निकल जाएं और संसद के सामने एकत्रित होकर अपने प्रदर्शन को समाप्त करें। अगर किसी ने मेरी अपील नहीं मानी तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसे सभी लोगों के प्रति अपनी नफरत का ऐलान करता हूं। देखते ही देखते मुक्तदा सदर की अपील का असर दिखने लगा। सदर धड़े के समर्थक ग्रीन जोन से निकलने लगे, संसद के सामने लगे हुए तंबुओं को भी उखाड़ कर वापस ले गए। वहीं सरकार ने भी शांति व्यवस्था के लौटते ही बगदाद समेत सभी प्रांतों में आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों को उठा लिया। इस बीच इराक की अदालत में देश की संसद के परिसमापन को लेकर कुछ सांसदों द्वारा अर्जी दी गई है, जिस पर बुधवार यानी 31 अगस्त आज ही सुनवाई होगी। इस पर न्यायालय क्या फैसला करेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बगदाद से IRIB के लिए जलाल खालिदी की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं रूस का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के एक बहुत प्रभावी नेता थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट शासन में सुधार का बीड़ा उठाया था। गोर्बाचोव सोवियत सरकार के एक प्रसिद्ध नेता थे। रूसी सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति रहे चर्चित नेता मिखाइल गोर्बाचोव का मंगलवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी थे। इसके अलावा वो कई बड़े पदों पर रह चुके थे। मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना युद्ध किए ही शीत युद्ध को खत्म करा दिया था। हालांकि वे सोवियत संघ के पतन को रोकने में नाकाम रहे। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचोव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद गोर्बाचोव ने मॉस्को के एक अस्पताल में मंगलवार को अंतिम सांस ली। सन 1985 में वे सत्ता में पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व सोवियत संघ के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के कई कार्यक्रम आरंभ किए थे। वे पश्चिम से नजदीकी के पक्षधर माने जाते थे। सन 1990 में गोर्बाचोव को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। सन 1990 से 1991 तक वे पूर्व सोवियत संघ के नेता रहे। उन्हीं के जमाने में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 25 दिसंबर सन 1991 को एक विद्रोह के बाद गोर्बाचोव को त्यागपत्र देना पड़ा था। उनकी ग्लासनोस्ट नीति ने संचार माध्यमों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया था। 1988 में मिखाइल गोर्बाचोव ने घोषणा की थी कि सोवियत संघ अब ब्रेजनेव की नीतियों का पालन नहीं कर रहा है। वे शीत युद्ध को समाप्त करवाना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचोव ने बिना रक्तपात के शीत युद्ध को समाप्त किया, लेकिन सोवियत संघ के पतन को रोकने में वे विफल रहे। पश्चिम से सोवियत संघ के तनाव को कम करने और परस्पर संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से गोर्बाचोव ने बहुत प्रयास किए। पश्चिम के बारे में उनके भीतर सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता था। मिखाइल गोर्बाचोव ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए निशस्त्रीकरण और हथियारों पर नियंत्रण की भी कई कोशिशें की थीं। पूर्व सोवियत संघ के विघटन से पश्चिम में जहां उनकी प्रशंसा की गई थी, वहीं पर रूस में उनके इस काम को विशेष महत्व नहीं मिल पाया। बहुत से रूसी उनके इस काम के कड़े विरोधी भी थे। सन 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन के साथ ही उसके भीतर से कई देशों ने जन्म लिया था। रूस को राष्ट्रसंघ में सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। रूसियों में पश्चिम के प्रति पाई जाने वाली आशावादी विचारधारा और इस सोच के बावजूद कि पश्चिमी ब्लॉक में रूस को स्वीकार कर लिया जाएगा, अमेरिका ने पश्चिम के मुखिया के रूप में कभी भी रूस को महत्व नहीं दिया, बल्कि पूर्वी रूस तक नेटो के प्रसार की कोशिशें वो करता रहा। यही कारण है कि सन 2000 में व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस की सत्ता में पहुंचने के समय से रूस के बारे में अमेरिका का व्यवहार नकारात्मक ही रहा है। यूक्रेन संकट के बाद इसमें अधिक कड़वाहट आ गई है। वर्तमान समय में पश्चिम ने अमेरिका के नेतृत्व में रूस के विरुद्ध हर प्रकार का दबाव बढ़ा दिया है, जिसमें आर्थिक दबाव सर्वोपरि है। यूक्रेन युद्ध की आड़ में पश्चिम ने रूस के विरुद्ध अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा लगता है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने पश्चिम पर भरोसा करके जो कुछ किया था, उस प्रकार का कोई भी काम करने से व्लादिमीर पुतिन को निश्चित रूप से बहुत पछताना पड़ेगा।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोता, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आजकल लोग पूरी दुनिया में परेशान हैं। लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनके दिलों की आवाज़ है कि काश कोई आता और इस दुनिया में हो रहे अत्याचारों का अंत कर देता। जी हाँ दोस्तों, लोग चाहे अनचाहे में महामुक्तिदाता का इंतज़ार कर रहे हैं। वे पूरी दुनिया को उसी तरह से न्याय व शांति से भर देंगे जिस तरह से वो अन्याय और अत्याचार से भरी होगी। महामुक्तिदाता की प्रतीक्षा यानी न्याय और शांति की प्रतीक्षा, भेदभाव की समाप्ति की प्रतीक्षा। महामुक्तिदाता के काल में इंसान और इंसानियत अपनी परिपूर्णता का मार्ग तय करेंगे। वो वक्त आएगा जब इंसान ये समझ जाएगा कि बुद्धि और ज्ञान के विकास में ही लोक परलोक की भलाई निहित है। उस वक्त इंसान मुक्ति और कल्याण का रास्ता तय करेगा। जिस इंसान की बुद्धि और ज्ञान में जितना अधिक विकास होगा, उसका जीवन उतना ही बेहतर होगा। इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को तब बेहतर ढंग से समझेगा। जो इंसान जितना बेहतर ढंग से जीवन के उद्देश्य को समझ जाएगा, वो अपने जीवन को उतने ही बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करेगा। कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और लोक परलोक में उसे बेहतर बनाने की कोशिश की। महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने पवित्र कुरान में ये कहा है कि हमने इंसान और जिन्नात दोनों को अपनी उपासना के लिए पैदा किया है। यानी इंसान की रचना करने वाले ने ये बता दिया है कि इंसान की रचना का उद्देश्य महान ईश्वर की उपासना करना है। उपासना का ये मतलब नहीं है कि इंसान सुबह शाम केवल नमाज पढ़े, बल्कि उपासना से तात्पर्य हर वो काम है जो महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए और वो कार्य उसकी इच्छा के मुताबिक भी हो। अगर कोई महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए शराब पिए, चोरी करे या किसी की हत्या करे, तो इस प्रकार के कार्य को उपासना नहीं कहा जा सकता। यद्यपि वो महान ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए क्यों न अंजाम दे, क्योंकि इस प्रकार के कार्य महान ईश्वर की इच्छा के खिलाफ हैं। महान ईश्वर ने इस प्रकार के कार्यों से मना किया है। सारांश यह है कि केवल वे कार्य उपासना है जो महान ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अंजाम दिए जाएं। आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने ये कहा था कि जब महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का विश्वव्यापी शासन आरंभ होगा तो पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित होगा। अत्याचार का अंत हो चुका होगा, ढूंढने पर भी अत्याचार व अन्याय दिखाई नहीं पड़ेंगे। पूरी दुनिया उस तरह से न्याय से भरी होगी जिस तरह वो अन्याय व अत्याचारों से भर गई थी। ये वो समय होगा जब इंसान के अंदर निहित योग्यताएं और क्षमताएं निखर कर सामने आएंगी। उस वक्त इंसान अपने अस्तित्व में निहित क्षमताओं से उत्तम ढंग से अवगत होगा। महामुक्तिदाता के समय में इंसान ये समझेगा कि दूसरों पर अत्याचार करना कितना घटिया और तुच्छ काम है। उस समय कोई भी गरीब नहीं होगा। उसकी एक वजह यह होगी कि हर इंसान को उसका अधिकार मिल जाएगा, यानी गरीब को भी उसका अधिकार मिल जाएगा। कोई अपने अधिकार से अधिक लेने की कामना भी नहीं करेगा। आज बहुत सी समस्याओं की जड़ यह है कि बहुत से इंसान दूसरों के अधिकारों को भी अपना ही अधिकार समझते हैं और उसे लेने के लिए यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं केवल वे ही दूसरों पर अत्याचार करते हैं और दूसरों के अधिकारों को हनन करते हैं, बल्कि इस काम में तथाकथित मुसलमान भी गैर मुस्लिमों से पीछे नहीं हैं। बहुत से मुसलमान दूसरे मुसलमानों के अधिकारों को अपना बनाने या दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने के लिए उनकी हत्याएं करते हैं, उनका दमन करते हैं, उनका परिवेष्टन करते हैं। यमन में जो कुछ भी हो रहा है वो सऊदी अरब इसी परिप्रेक्ष्य में कर रहा है। यहाँ पर एक बिंदु उल्लेखनीय यह है कि ऐसा नहीं है कि महामुक्तिदाता की प्रतीक्षा मुसलमान और वो भी केवल शिया ही कर रहे हैं, बल्कि बहुत से गैर मुसलमान भी महामुक्तिदाता की प्रतीक्षा में हैं। उसकी वजह यह है कि अन्याय व अत्याचार केवल मुसलमानों पर नहीं हो रहा है। दुनिया का कोई भी समाज, देश और राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ पर अत्याचार ना हो रहा हो या वहाँ लोगों के साथ अन्याय ना हुआ हो। अंतर केवल इतना है कि कुछ समाजों व कुछ देशों में कुछ लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव जैसी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो कुछ देशों में ऐसा कम हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं उन पर भी अत्याचार किया जा रहा है। वे लोग भी अत्याचार व अन्याय से पीड़ित हैं। उनकी भी अंतरात्मा और दिल की यही आवाज़ है कि कोई आए और इस दुनिया में व्याप्त अन्याय का अंत करके शांति और सुरक्षा को स्थापित कर दे।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
इस प्रकार के लोग महामुक्तिदाता का नाम नहीं जानते हैं, परंतु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वे आएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों को न्याय दिलवाएंगे, बल्कि हर इंसान के साथ न्याय होगा। महामुक्तिदाता के काल में तकरीबन समस्त लोग महान ईश्वर और इस्लाम धर्म के मानने वाले हो जाएंगे। اسلام کے علاوہ نہ کوئی دھرم ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی ماننے والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے لوگوں کو اس سمے بادھ کیا جائے گا، بلکہ لوگوں کی بدھی اور ان کا گیان اتنا وکست ہو چکا ہوگا کہ وہ خود اس بات کو سمجھنے لگیں گے کہ ہمیں اپنے رچیتا اور پالنہار کی اپاسنا کرنی چاہیے، نہ کہ اس چیز کی اپاسنا کرنی چاہیے جس کو ہم نے سوئم بنایا ہے۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ یہ کون سی مورکھتا ہے کہ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کی اپاسنا کر رہے ہیں، جبکہ آج کروڑوں لوگ مل جائیں گے جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی نرجیو چیزوں کی اپاسنا کرتے ہیں اور ان سے اپنے من کی بات کرتے ہیں۔ اس کاریہ سے انہیں شانتی بھی ملتی ہے، جبکہ کتنی اتارکک بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنی بنائی ہوئی چیز کی اپاسنا کرتے ہیں۔ انسان اس چیز کی اپاسنا کرتا ہے جو نرجیو ہے، وہ کسی پرکار کا نہ تو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے مانگنا ہے جو کچھ بھی نہیں دے سکتی، اور وہ اپنے استتو کے لیے دوسروں کی ہمیشہ محتاج ہے۔ مہا مکتی داتا آنے کے بعد پوری دنیا میں کیول نیائے و شانتی استھاپت نہیں کریں گے، بلکہ ہر پرکار کے ویچارک اور غیر ویچارک گمراہی بھی ختم کر دیں گے۔ جہاں وہ نیائے کی پرتی مورتی ہیں، وہیں پر وہ سچائی اور مارگ درشن کے سورج بھی ہیں۔ وہ مارگ درشن اور سچائی کا ایسا سورج ہے جہاں کسی پرکار کی گمراہی نہیں ہوگی۔ آج بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ نیائے سے کام لینے کو پسند نہیں کرتے، جبکہ مہا مکتی داتا کے کال میں لوگ نیائے پسند کریں گے، دوسروں پر اتیاچار کرنے سے نفرت کریں گے، نیائے کو سماج کی سندرتا کا آبھوشن سمجھیں گے۔ نیائے سماج اور مانو جیون کا آدھار ہوگا۔ آج بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ انیائے سے کام لینے کی جگت میں رہتے ہیں، جبکہ مہا مکتی داتا کے کال میں لوگ ایک دوسرے سے سچے دل سے پریم کریں گے اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے، لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان پہلے اور اپنی سمسیاؤں کا سمادھان بعد میں کریں گے۔ مہان ایشور نے انسان کو سروشریشٹھ پرانی بنایا ہے۔ جب مہا مکتی داتا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تب بہت سے لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ مہان ایشور نے انسان کو جو سروشریشٹھ پرانی کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس وقت مانوتا اپنے شکھر پر ہوگی، اس وقت انسان کے اندر موجود شمتائیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔ جب انسان کے اندر کی شمتائیں باہر آ جائیں گی، تب بہت سے لوگوں کو مہان ایشور کی وہ بات یاد آئے گی جس میں اس نے انسان کو سروشریشٹھ پرانی کہا ہے۔ یہ وہ سمے ہوگا جب انسان اپنی بدھی کے مہتو کو صحیح ارتھوں میں سمجھ چکا ہوگا۔ اس وقت انسان سمجھے گا کہ بدھی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی مصیبت اگیانتا ہے۔ مال و دولت نہ ہونے کے کارن انسان کو بہت سی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پرنتو اگیانتا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ اسی پرکار ہر پرکار کی نعمت کا ہونا اچھی چیز ہے، مگر بدھی کا نہ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ بدھی سے ہی انسان اپنے پالنہار کی اپاسنا کرتا ہے، بدھی سے ہی برائیوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، بدھی ہی انسان کو مانوتا کے شکھر تک پہنچاتی ہے۔ بدھی کو نبی باطن کہا جاتا ہے، بدھی کے مادھیم سے ہی انسان صحیح اور غلط کو سمجھتا ہے۔ بدھی وہ چیز ہے جو انسان کو غیر انسان سے الگ کرتی ہے۔ مہا مکتی داتا کے کال میں بدھی وکاس کے اپنے شکھر کو طے کرے گی۔ آج انسان نے جتنی بھی پرگتی کی ہے، سب بدھی کا ہی نتیجہ ہے۔ بدھی کی وجہ سے انسان نے سائیکل سے لے کر ویمان تک جیسی چیزیں تیار کی ہیں۔ بدھی وہ دولت ہے جس کی قیمت بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بدھی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جیون کے ہر کھیتر میں پرگتی کر رہا ہے۔ यदि बुद्धि न होती तो इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह रहता। महामुक्तिदाता का आगमन बुद्धि की प्रगति की बहार है, इंसानों की क्षमताओं और योग्यताओं के निखरने की बहार है, महामुक्तिदाता का जुहूर यानी मानवता की बहार। दोस्तों, महामुक्तिदाता के काल में हर तरफ शांति ही शांति होगी, सुकून ही सुकून होगा। हर कोई अपनी कीमती से कीमती चीज को अगर कहीं पर भूल जाएगा तो फिर उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि वो चीज खो जाएगी या उसको नहीं मिलेगी। जिस इंसान की जो भी चीज गायब होगी वो उसे जरूर मिलेगी। महामुक्तिदाता का आगमन यानी सच्चाई के सूरज का उदय और अंधकार का अंत। कोई भी गलत व गुमराह करने वाली चीजों का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, क्योंकि कोई गुमराह और जाहिल ही नहीं रहेगा जो गलत चीजों का प्रचार करेगा। आज जिस तरह से हर देश को अपनी रक्षा के लिए सीमा पर कुछ सैनिकों को तैनात करना पड़ता है, उस तरह किसी भी देश को सीमा की रखवाली के लिए सैनिक तैनात करने की कोई जरूरत नहीं होगी। महामुक्तिदाता के काल में जब किसी इंसान को जरूरत होगी तो वो दूसरे की जेब से अपनी जरूरत का पैसा भी निकाल लेगा और दूसरा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करेगा। लोग दूसरों को अपना समझेंगे। कितने खुशनसीब हैं वे लोग जो महामुक्तिदाता के काल में जीवन गुजारेंगे। हे पालनहार, हे विधाता, हम सबको वो वक्त देखने और उनके शासन काल में रहने का सौभाग्य प्रदान कर। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने सुना हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण, जिसमें मुक्तिदाता और मोक्षदाता इमाम ज़माना हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के काल के बारे में बात की गई कि वो किस तरह का होगा और उसमें जीवन गुजारने वाले लोग किस तरह के होंगे और उनके आपस में रिश्ते कैसे होंगे, उस समय किस तरह का माहौल होगा। अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम आजकल।
आजकल श्रोताओं, कार्यक्रम आज कल लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम ईरान की अर्थव्यवस्था में नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने नए हिजरी शमसी साल के लिए नारा निर्धारित किया है, नॉलेज बेस्ड व रोजगार सृजक उत्पादन। ईरान की अर्थव्यवस्था को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बड़े निर्णायक परिणाम निकल रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए इसका एक नतीजा ये भी निकला है कि उत्पादन पर आने वाली लागत काफ़ी कम हो गई है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मोहम्मद सबूरी दैलमी ये कहते हैं कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन इसके उत्पादकों की उपयोगिता बढ़ जाती है, साथ ही उस उत्पाद को तैयार करने की लागत भी कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि यह शैली उत्पादों को बाजार में कंपटीशन के योग्य बनाने में बड़ी मददगार साबित होती है। कृषि का शुमार उन क्षेत्रों में होता है जिनमें उत्पादों पर आने वाली लागत ज़्यादा होती है। اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اتپادن کو اس استھتی میں پہنچانا ضروری ہے کہ کم لاگت کے ساتھ ادھک اتپاد تیار ہو سکے، ساتھ ہی اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو۔ چونکہ وگیان اور تکنیک وہ پونجی ہے جسے آپ جتنا بھی استعمال کیجئے اس میں کمی نہیں آتی بلکہ وردھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اتپادن کو نالج بیس بنا دیا جائے تو ایک بڑا انتر یہ آئے گا کہ اس کی یونٹ سے اسی کچے مال کے ذریعے ادھک اتپاد حاصل ہوگا۔ کرشی میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اس سمے جن زمینوں پر نالج بیسڈ کھیتی ہو رہی ہے اور جہاں پر نالج بیسڈ پروڈکشن کا فارمولا آزمایا گیا ہے، وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کم شیترفل میں پانی کی کم لاگت کے ساتھ زیادہ فصل پیدا ہوئی۔ کچھ مثالوں میں تو فصل میں کئی گنا کی وردھی بھی درج کی گئی۔ اسلامی کرانتی کے ورش نیتا اس سندرب میں کہتے ہیں کہ نالج بیسڈ پروڈکشن سے لاگت میں کمی آتی ہے، یعنی اگر اس شیلی پر کام کیا جائے تو اتپادن کا کام آرتھک دشٹی سے کافی آسان ہو جاتا ہے۔ نالج بیسڈ پروڈکشن میں اس بات پر خاص نظر رکھی جاتی ہے کہ اتپادوں کی گنوتا بہت ادھک ہو۔ انوسندھانوں سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ دشکوں میں اودیوگک کھیتر میں آنے والے وکاس کا بڑا حصہ ان آوشکارک اور لگھو استریہ یونٹوں پر آدھارت رہا ہے جن میں بہت ادھک پونجی کے بجائے کم پونجی لگائی جاتی ہے۔ ایران میں آٹوموبائل انڈسٹری کو سرکار کا بھرپور سمرتھن پراپت رہا، مگر تکنیک کے میدان میں نئے پن کی کمی کی وجہ سے وہ گنوتا کی دشٹی سے اس استھان پر نہیں پہنچ سکی جس استھان پر اسے ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس انڈسٹری میں نالج بیسڈ پروڈکشن کے فارمولے پر بخوبی عمل کیا گیا ہوتا تو نشچت روپ سے اس سے جنتا کو بھی لابھ پہنچتا اور دیش کی ارتھ ویوستھا میں بھی اس کی کافی بھومکا رہتی۔ وگیان و تکنیک کے معاملے میں پورو اپ راشٹرپتی نسرین سلطان خواہ کہتی ہیں کہ ادیوگ اور اکانومی تب نالج بیسڈ بنتے ہیں جب اس اکانومی اور ادیوگ میں نیچے سے اوپر تک ہر استر پر تکنیک کا پرسار اس طرح ہو کہ وہ ان شیتروں میں پوری طرح اپنے دائرے میں لے لے۔ مثال کے طور پر اس سمے دیشوں کے بیچ آٹوموبائل انڈسٹری کے میدان میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن چل رہا ہے۔ جن دیشوں کے پاس نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے وہ اپنی گاڑیوں میں ادھک بہتر فیچر دیتے ہیں اور نتیجے میں اس دیش کے آٹوموبائل اتپاد آرتھک دوڑ میں انتراشٹری استر پر اپنی جگہ سرکشت کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس یہی راستہ ہے کہ نالج اور تکنیک کو پورے ادیوگ میں ہر استر پر اس طرح سے پھیلا دیا جائے اور یہ ماحول بن جائے کہ نتیجے میں زیادہ بہتر اتپاد کم لاگت پر تیار ہونے لگے۔ آٹوموبائل انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اگر اس سے چھوٹی انڈسٹری کی بات کی جائے اور زعفران یا کیسر کی کھیتی کی مثال لی جائے تو یہ اتپادن بھی دنیا کے بازاروں میں اپنی جگہ بنانے اور انیہ دیشوں کو کمپٹیشن دینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ نالج بیسڈ پروڈکشن کی شیلی پر ہی آگے بڑھا جائے۔ یہی حال کارپیٹ اور دوسری چیزوں کے اتپادن کا بھی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہائی ٹیک کمپنیوں کے کھیتر میں ہی ہم نالج بیسڈ پروڈکشن کو ویوہارک بنا سکتے ہیں۔ ہر استر پر یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اکانومی اور انڈسٹری نالج بیسڈ پروڈکشن کی شیلیوں پر چلا جائے۔ انتراشٹریہ منڈیوں میں اور ان دیشوں میں جو آرتھک دشٹی سے وکست مانے جاتے ہیں، اکانومی کی اگر بات کریں تو وہ نالج بیسڈ پروڈکشن کی لائن پر ہی کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی آرتھک و اودیوگک سنستھا اگر چاہتی ہے کہ دنیا میں جاری آرتھک پرتسپردھا میں وہ بنی رہے اور اس کی پوزیشن مضبوط رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے उत्पाद और सेवाएं लगातार अनुसंधान के अनुसार बेहतर होती जाएं और नित नए तरीके आजमाए जाएं। दुनिया की बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अगर देखा जाए तो उनके बजट का 10-20% हिस्सा अनुसंधान और रिसर्च के कामों पर खर्च होता है। यानी इन कंपनियों का टर्नआउट अगर अरबों डॉलर का है तो वे अपनी इस विशाल वित्तीय क्षमता का 10-20% भाग अनुसंधान और रिसर्च पर खर्च करती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए उनकी क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह देखा जाए तो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन का विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय है। नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन का एक बड़ा फायदा ये भी है कि अगर किसी भी देश में ये प्रक्रिया विधिवत रूप से स्थापित हो जाए और व्यापक रूप से फैल जाए तो इसका फायदा ये होता है कि देश के भीतर छोटे उद्योग चलाने वाले उद्यमियों और छोटी यूनिटों के लिए भी नए रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे में वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बनाने में सक्षम होने लगते हैं। जब देश के भीतर छोटे कारखानों और औद्योगिक यूनिटों में आधुनिक मानकों को ध्यान में रखकर काम होगा और नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन की शैली पर आगे बढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाने का सामर्थ्य पैदा हो जाएगा। नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन में बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च की भी होती है। इसका नतीजा ये होता है कि कंपनियां वर्षों से चली आ रही शैली पर अपने उत्पाद तैयार करने के बजाय बाजार के ताज़ा हालात पर नज़र रखती हैं। उन्हें बखूबी अंदाज़ा होता है कि बाज़ार में कौन सी चीज़ों की मांग मौजूद है, कौन से उत्पाद ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पहली बार नज़र आने के बावजूद अपनी जगह बना सकते हैं। यानी ये उत्पाद अब लोगों के लिए परिचित हैं, मगर अनुसंधान के जरिए सटीक अनुमान लगा लिया जाता है कि अगर ये उत्पाद बाजार में आया तो अपनी जगह बनाने में फौरन कामयाब हो जाएगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान की गिनती उन देशों में होती है जिनकी अर्थव्यवस्था में तेल और गैस की बुनियादी भूमिका रही है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इन देशों की इकोनॉमी तेल और गैस पर ही टिकी हुई है। तेल और गैस पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता ने इन देशों को दूसरे कई क्षेत्रों में अन्य देशों का मोहताज बना दिया है। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी का कुछ देशों के लिए बुरा परिणाम ये निकला कि वहां लोग अपनी जरूरत की चीजें बनाने के बजाय अन्य देशों से चीजें खरीदने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि इन देशों में तेल और गैस से हटकर दूसरे उद्योग आगे नहीं बढ़ पाए। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने इस स्थिति के नकारात्मक पहलुओं को हमेशा अपने सामने रखा और ये कोशिश की कि देश की अर्थव्यवस्था की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो, जबकि सरकार राज्य के लिए दूसरे स्रोतों को विकसित करे। ईरान ने जब ये देखा कि उसकी बहुत सी परियोजनाएं इसीलिए अधूरी रह गईं कि तेल की आय पर निर्भरता थी, तो फिर इस बात पर बहुत ही संजीदगी से विचार किया गया कि इकोनॉमी की तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तेल की एक समस्या ये रही है कि इसकी कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव आता रहा है। कभी ये तेल $100 प्रति बैरल से अधिक कीमत पर बिकता है और कभी इसकी कीमत $20 प्रति बैरल से भी नीचे आ जाती है। ऐसे में उन देशों की सारी विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं जिनकी इकोनॉमी तेल की आय पर निर्भर होती है। इन हालात में जब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया गया तो देखने में आया कि अर्थव्यवस्था को बड़ा मजबूत सहारा मिला है। निर्यात में भी उल्लेखनीय रूप से उछाल देखा गया। नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ तो इससे गैर पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात इतना बढ़ा कि देश की इकोनॉमी में तेल और गैस के साथ ही इस स्रोत ने एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के साथ ही दूसरा विचार ईरान में ध्यान का केंद्र बना और वो था देश की इकोनॉमी को प्रतिरोधक इकोनॉमी में बदलना। प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादें ऐसी हों जो अन्य देशों में आने वाले बदलाव से हिल ना जाएं, या तेल की कीमत कम हो जाने से उनके ठप पड़ जाने की नौबत न आने पाए। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने इस संदर्भ में एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने पड़ोसी देशों के बाजारों से अपना रिश्ता मजबूत किया और इन देशों के साथ दो तरफा व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। इसका नतीजा ये होगा कि ईरान पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का असर धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यानी ये पाबंदियां ईरान की इकोनॉमी पर कोई विशेष असर नहीं डाल पाएंगी। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अलुज़्मा सैयद अली खामिनेई ने 7 साल पहले पत्रकारों के साथ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, इसी कार्यक्रम के साथ हमारी ये सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi और व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098-9035065492। इसी के साथ अनुमति दीजिए, खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔